ओम शांति। आप सभी ने दीदी के बहुत अच्छे सुंदर हम सभी ने महावाक्य सुने, आप सभी ने सुने ना। एक बहुत अच्छी बात मेरे को भी घर कर गई, बहुत अच्छी लगी वो अंदर तक, जैसे कहते उसको समा जाना। एक बहुत अच्छी बात की कि दादी हमारी प्रकाश मणि जो थी वो 140 देशों में हमारे शाखाएं हैं, और भारत में हजारों शाखाएं होने के बाद, लाखों भाई बहन होने के बाद भी वो हेड थी, परंतु कभी भी उनको ये नहीं लगा कि जिसको कहते हैं तनाव। तो एक छोटी सी बात बहुत अच्छी कहा कि वो एक अपने आप को हेड नहीं समझती थी, क्योंकि हेड समझते तो क्या लगेगा, हेडक है। हम लोग भी आज परिवार में घर में होते हैं तो अपने आप को हेड समझते हैं, परिवार में ही तो चला रहा हूं तो बहुत सारा हेडक अपने पास रखते हैं। तो इसलिए अपने आप को हेड नहीं समझना, क्या समझना है, अगर हेड समझेंगे तो हेडक हो जाएगा हमारे लिए। हमें क्या समझना है कि हम कौन है, निमित्त हैं। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनको भरण पोषण करना या उनको पढ़ाना लिखाना आपका कर्तव्य है, क्या आपको जिम्मेवारी है, ट्रस्टी हैं। तो हम सभी क्या करें, पहले सबसे पहले हैं कि अपने आप को निमित्त रखें। करण करावन हार जो बाबा है, हम सब आत्माओं से कराते हैं, हम बच्चे हैं। हम अगर अपने आप को हेड समझेंगे तो हम किसी प्रकार का कोई भी कार्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सफल वही होता है जो ईश्वर को सामने रख के कर्म करते हैं। आप सभी थोड़े खड़े हो जाएंगे सभी लोग, बहुत सुंदर एक एक्टिविटी हम करते हैं, खड़े हो जाएंगे सभी लोग, खड़े हो जाएंगे और अपना जो भी है एक दूसरे को आप पार्टनर बना लीजिए, सामने है ना, और उससे आपको क्या हैंडशेक करना है और उसकी दो खूबियां आपको देखना है और उसको बोलना है आप बहुत अच्छे हैं। आगे आ जाइए आप लोग, पीछे जो है, पीछे वाले आगे आ जाइए इधर को, और आगे आ जाइए, पीछे बैठे हैं, पीछे वाले आगे आ जाइए। अपना जो भी है पार्टनर, एक डबल पार्टनर बना लीजिए, उससे पहले हैंडशेक कीजिए, आप कीजिए आप लोग, आप उससे बोलिए आप बहुत अच्छे हैं, बोलिए बहुत अच्छे हैं आप। कोई दो अच्छाई उनमें आप उनका वर्णन करें, आप करें उनका वर्णन करें, क्या अच्छा लग रहा है आपको, हाँ दो अच्छाई वर्णन करें फिर हम, हो गया। आप लोग दोनों जन मंच पे आ जाइए, जरा दोनों मंच पे आइए, आप लोग दोनों आ जाइए इधर मंच पे आ जाइए, आप लोग आप सभी बैठ जाइएगा, देखिए क्या सीखते हम। आइए आप लोग ऊपर आ जाइए दोनों जन, आपने दो अच्छाई इनको बताई आपकी और आपने भी बताई। शुभ नाम क्या है आपका, वर्षा, और आपका हर्षिता। तो आप, हम वर्षा से पूछेंगे कि हर्षिता की दो अच्छाई आपने कौन कौन सी सुनी है।
हर्षिता की दो अच्छाई है, पहली तो ये कि ये सारी चीजें बांधती हैं, पंचुअल है टाइम की और रिस्पेक्ट करती है सबकी।
दो अच्छाई आप इनकी बताइए।
ये भी बहुत रिस्पेक्ट करती है सबकी, और मतलब कि बहुत अच्छा, मैंने इनसे बहुत सीखा है बहुत कुछ, और ये बहुत अच्छा पढ़ाती भी है।
जी, तो ये सबसे अच्छी चीज है, बाबा ने हम बच्चों को अनेक गुणों से भरपूर किया है। आप बैठिएगा, एक बार जोरदार इनको ताली बजाइएगा। आप हमेशा, बाबा हमें यही सिखाते हैं कि आजकल आप परिवार में देखेंगे तो एक दूसरे की हमेशा बुराई देखते हैं, कभी भी आपने देखा कोई कभी किसी की अच्छाई नहीं देखता। हमेशा बाबा के घर से आज ये गुण लेके जाए कि हम जब भी जिससे मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं या दृष्टि लेते हैं, तो हम क्या करें, उसकी हमेशा अच्छाई ही देखें, बुरा ना देखें हम। अगर इसलिए हम लोग बहुत अच्छे नहीं थे, पता है ना हम लोग कैसे थे, आप सबको पता है, पर बाबा ने आते आते शुरू से ही हम सबको क्या कहा, मुरली में मीठे बच्चे, क्या कहा, परंतु हम मीठे थे नहीं, आप सबको मालूम है ना हम लोग थे क्या मीठे, परंतु बाबा ने हम सबको मीठे बच्चे कह करके हम सबको कैसा बना दिया, बहुत ही मीठा बना दिया, और हम बहुत ही आज मीठे हैं। और आज भी देखो संकल्प हमारे जो भाई आए हैं ब्रजमोहन गुप्ता जी, उनने भी कहा कि हमें यहां मीठा बन के जाना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी जो दीदी हैं, हमारी जो दादियां हैं, हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं, ये महान कहें गुणों की खान तो है, साथ साथ मधुर भी हैं, मीठे भी हैं। और उसके लिए हम सबको अनुभव हुआ है, आप शायद बार बार यहां आए हैं, पहली बार आए हैं, कई बार बार में आए, ये हमारा जो ज्ञान सरोवर पैलेस है ये अति रमणीक भी है तो तपस्वी स्थल भी है। आप सबने देखा होगा यहां पर कि यहां हम लोग आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। क्या हुआ है कि आप लोग आए हैं, क्या हुआ है, है? किसने बुलाया है कि आप लोग यहां आए हैं? बाबा ने बोला पक्का। होता क्या है, हाँ, बिना ईश्वर के, बिना संयोग के हम लोग यहां नहीं आ सकते। तो हम लोग वास्तव में कौन है, हनुमान है। कौन है? हनुमान है। आप नारद नहीं है, कौन है? हनुमान। एक बहुत सुंदर कहानी के साथ हम चलते। एक बार क्या हुआ कि नारद जी को तीनों लोगों का बीजा प्राप्त था, मालूम है आप लोग? आज वर्तमान में नारद कौन है, हम लोग पत्रकार को बोलते हैं कि उन्हें भी कहीं जाने का अधिकार है। ऐसे ही नारद जी को भी तीनों लोगों का बीजा प्राप्त था, वो कहीं भी नारायण नारायण करते थे और किसी लोक में चले जाते थे। तो एक बार वो नारायण नारायण करते करते भगवान के पास गए स्वर्ग लोक में। तो भगवान उस समय कुछ लिख रहे थे, तो नारद जी को जिज्ञासा हुई, तो कहा भगवान आप क्या लिख रहे हैं, मैं कुछ जान सकता हूं? तो भगवान ने लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नारद, आज मैं उन बच्चों के नाम लिख रहा हूं जो मुझे बहुत याद करते हैं। आज मैं उन बच्चों के नाम लिख रहा हूं जो मुझे बहुत याद करते। तो लिस्ट है, बोले मैं देख सकता हूं प्रभु लिस्ट? तो भगवान ने लिस्ट को आगे बढ़ाया तो सबसे पहले नाम नारद का था। किसका था? नारद का था। तो नारद खुशी से हाले फूले समाए नहीं और सब तीनों लोकों में जाके कहने लगे कि देखो मैं भगवान को सबसे ज्यादा भगवान को याद करता हूं, मेरा नाम सबसे ज्यादा लिस्ट में आगे है, नंबर में। हनुमान जी भी रस्ते में मिले तो हनुमान जी कहा, तुम कहते हो मैं राम का बहुत बड़ा भक्त हूं, देखो मेरा नाम सबसे पहले है। तो हनुमान जी ने मैं कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो राम का भक्त हूं, मुझे जो भी सेवा होती है मैं करता हूं, वो भी नॉर्मल तरीके से। कुछ दिन बीतने के बाद पुनः नारद जी भगवान के पास गए तो भगवान भी उस दिन कुछ रमणीकता से कुछ लिख रहे थे। तो भगवान ने कहा कि नारद, भगवान ने कहा, फिर नारद ने कहा भगवान आज क्या लिख रहा है, इतने विचार में आप डूबे हैं? तो बोले आज मैं उन बच्चों के नाम लिख रहा हूं जिनको मैं सबसे ज्यादा याद करता हूं। जिनको उस दिन आप भगवान क्या लिख रहे थे, जिनको भगवान जिनको याद करते हैं। पहले दिन लिख रहे थे कि जो नारद को, कि जो भगवान को ज्यादा याद करते हैं, और उस दिन भगवान क्या लिख रहे थे, जिनको भगवान याद करते हैं। तो फिर नारद जी को जिज्ञास हुई कि प्रभु मैं क्या देख सकता हूं? तो वो लिस्ट जो देखी तो सबसे पहले नाम किसका था? हनुमान का था। तो ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री को हमारी डायरी में अगर नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमारा नंबर अगर प्रधानमंत्री की डायरी में है तो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग भी भगवान हमको याद किया है। भगवान ने किसको याद किया? हाँ, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि हम भगवान के घर में आए हैं, भगवान ने हमें याद किया है। तो हम सच्चे सच्चे हनुमान हैं। क्या है? हनुमान है। और आज इस कॉम्प्लेक्स में हम बहुत चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि यहां पर प्योरिटी है, जो पवित्रता है वो हम सबको आकर्षित करती है। आप देखिए यहां जो भाई बहन है, हम अमृत वेले भी आते हैं, आप लोग साथ आते हैं, दीदी ने तो आपसे संकल्प कराया कि आप सभी लोग कम से कम 10 मिनट नहीं करें। मैं तो आपसे यही कहता हूं कि 10 मिनट नहीं, आप लोग अमृत वेले कम से कम 30 मिनट करें। करते हैं ना आप लोग? हाँ, ये वादा करके जाएं अपने आप से कि हम बाबा को 30 मिनट जरूर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 मिनट याद करने से, 10 मिनट तो पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है, जब तक बुद्धि पता नहीं, 30 मिनट में हम फिर भी बुद्धि को लगाएंगे तो तुरंत नीचे आती है, तुरंत अप डाउन होती है। क्योंकि मन क्या है, मन तो एक प्रकार का क्या है, चंचल है, बच्चा है, तो उसको समझाते हैं फिर समझता है फिर समझता है, तो अप डाउन होती रहती है। इसलिए हमें अप डाउन मन के होने के लिए, कम से कम स्थिर मन के लिए 30 मिनट हम जब बैठेंगे तो मुश्किल से हमें 10 मिनट एकाग्रता हमारी बढ़ेगी। तो आप निरंतर बाबा को याद करने के लिए आप कम से कम अमृत वेला का जो है 30 मिनट पूरा करें। और दूसरी चीज में बहुत अच्छी बात आपसे बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा जो मुख्य है वो कैरेक्टर्स है, क्या है, चरित्र है। हमारे यहां पर यही सिखाया जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। वर्तमान में जो समाज में है चरित्र का पतन हुआ है, चरित्र बुरी तरीके से खत्म ही हो गया। आपने देखा हम लोग जब पढ़ाई करते थे आज के 30 साल पहले स्कूल कॉलेज में जाया करते थे तो वहां एक ऐच्छिक होता था कि चरित्र निर्माण का पेपर एक ऐच्छिक होता था, और अब तो ऐच्छिक अब तो खत्म ही हो गया, नैतिक मूल्यों का कोई भी पेपर नहीं है। तो हर चीज के मूल्य बड़े हैं। कभी आपने देखा होगा दूध 20 रुपया लीटर होता था और आज कितना है, 50 रुपया लीटर है। कभी आपको समोसा दो रुपए में मिलता था, आज कितने में, 5 रुपए में, 10 रुपए में मिलता है। परंतु हर चीज का मूल्य बढ़ा है और मानवीय मूल्य घटे हुए। आपने पढ़ा होगा, अभी मैं ग्वालियर की घटना बताता हूं, केवल 10 रुपए में मर्डर हुआ, कितने में, 10 रुपए। मानव की वैल्यू कितनी है, आप सोचिए, 10 रुपए में हमको समोसा भी नहीं मिलता और 10 रुपए में क्या हो गया, मर्डर होगा। उसका मूल कारण यही है कि हम लोगों ने मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतारा। और मानवीय मूल्यों को उतारे कौन, क्योंकि मानवीय मूल्य हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे वो शुरुआत तो माता पिता गुरुजन ही करते हैं। परंतु आज तो ना जैसे गुरु हैं ना वैसे माता पिता हैं। और जो जनरेशन जो गैप हुई है हमारे जो जीवन में, आज वर्तमान समय में देखिए कई कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जनरेशन गैप हो गई है। पिता पुत्र को नहीं पास में रखना चाहता है, बाप बेटे को नहीं रखना चाहता, पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहती है, ये आखिर गैप हुआ कैसे। उस गैप होने का सबसे जो एक कहें हम जो विडंबना कहें वो हमारे मूल्य हैं। नहीं तो हमारे, आप देखिए बचपन में हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे, हम लोग उनके साथ खेला करते थे और हमें कहानी कहानी में हमें वो चरित्र की बातें बताया करते थे और हम लोग बड़े प्यार से इनको सीखते थे। कुछ दिन पहले की आप बात बताते हैं कि हमारे चरित्र आते कैसे, एक छोटी सी बात के साथ में चलता हूं, समय का अभाव है कि अब एक किसान बेटा किसान होता था, और किसान जब दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जब घर आता था तो वो स्नान करता था, स्नान करने के बाद और मंदिर जरूर जाता था, तो मंदिर में एक बच्चा होता था, उसका नाती जिसे कहते हैं बेटे का बेटा, तो वो मुख बोल के नहीं जानता, 2.5 साल का है 3 साल का है, पर उसको अंगुली पकड़ के जाता तो 10 पैसे उसमें भंडारी में दान पेटी में डालता और 10 उस बच्चे से डलवाता। ऐसा रेगुलर वो करता। संस्कार की बता रहे, संस्कार कैसे दिए जाते हैं। एक दिन किसान बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो जाता नहीं है कि अब ठीक है स्नान ध्यान करके सोते हैं खाना खाके। तो जो बच्चा होता है मुख बोल के नहीं जानता है, पर उसको मंदिर की आदत थी, कहां थी, मंदिर जाने की। तो वो धोती पकड़ता है ताऊ जी की, दादाजी की, और कहता इशारा करता है मंदिर ले चलो। तो वो मंदिर लेके जाता है। तो ये संस्कार बनते हैं हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से, और हमारे जो बीच के संबंधी होते हैं उनसे। परंतु आज तो ना टाइम है बेटे को मिलने से माता पिता का, तो बेटा भी जब बड़ा होता है तब वो भी कहता है कि मुझे भी टाइम नहीं है। आज क्या करते हैं कि पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं और खूब पैसा कमाते, उनको पैसा ही कमाना है, चरित्र तो उनको देना नहीं है बच्चों का, तो पैसा कमाते हैं और कहते हैं कि हम बच्चों को आया रख देते हैं और हॉस्टल में डाल देते हैं। यही होता ना, वो भी संस्कार तो सीखते नहीं है, आया क्या संस्कार देगी, और वहां हॉस्टल में भी इतने ज्यादा क्या संस्कार मिलेंगे उसको। तो वो लोग भी बड़े होकर जब बच्चे, क्योंकि अब जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो अच्छी ग्रेजुएशन हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है, वो भी विदेश में कहीं भी नौकरी करते हैं, तो वो भी जब माता पिता बुजुर्ग होते हैं तो वो यही कहते हैं कि पिताजी आपने हमें बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की, बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कराई और हमें बहुत अच्छी हमने सर्विस की है, हमने भी आपके लिए भी बहुत अच्छा सा जो है एक हमने डीलक्स आपको वृद्ध आश्रम देखा है, आप वहां रही। तो ये विडंबना ये है कि हम सभी ये चाहें कि अपने जीवन में भी मूल्यों को अपनाएं। और यहां जो मूल्य मिल रहे हैं बाबा के घर में, जो मूल्य आपको मिल रहे हैं, एक एक शब्द अमूल्य है, एक तो ऐसी पवित्र धरती पर आना, और ये तो वही ज्ञान सरोवर है जिसका शास्त्रों में गायन है कि जब हम ज्ञान सरोवर में जाते थे, डुबकी लगाते थे, तो वहां से परी और परे ज्यादा बन जाते थे। आप सबको इन तीन दिनों में अनुभव हुआ होगा कि आज हमें इस ज्ञान सरोवर में, हम लोग वास्तव में उस पानी के नहाने से नहीं, इस ज्ञान स्नान करने से हम लोग सच्चे परे जादी और परी बन रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपसे जब यहां से आप जाएं, तो आपके घर पे आप लोगों से जब बातचीत करें, बोलें आप लोग उनसे, तो वो कहें कि वास्तव में ये कोई परी और परी जादे आए हैं, वहां से कुछ इतना भर के आए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ही गए तो आप पूरी गुस्सा के इतने दिन की गुस्सा वहां निकाल दो। तो ये जहां से सारा जो है, आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाना, केवल यहां नहीं कि कानों तक ही सुनना है, कानों तक सुन करके आप लोग इस कान से सुना से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। उसकी भी एक कहानी है, सुना दूं दीदी? हाँ, उसकी भी कानों की कहानी है। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक मूर्तिकार ने तीन मूर्ति बनाई, एक मूर्तिकार ने तीनों मूर्ति एक जैसी बनाई, वो रखी थी। तो बाजार में जब लोग खरीदने के लिए गए तो पूछा कि मूर्ति कितने की है, तो उस मूर्तिकार ने, मूर्ति तीनों एक जैसी थी पर तीनों का उसने रेट जो है डिफरेंस बताया। एक मूर्ति थी 50 रुपए की, दूसरी 500 रुपए की थी और तीसरी 5000 रुपए की थी। तो लोगों ने कहा ये मूर्ति तो एक ही जैसी है, इतना डिफरेंट क्यों है मूर्तियों में? तो पहली मूर्ति उसने उठाई जो सबसे छोटी थी, 50 रुपए की थी, उस मूर्ति में से उसने एक धागा लिया, वो धागा एक कान से डाला और वो धागा दूसरे कान से निकल गया। तो बोले इस मूर्ति का जो मूल्य 50 रुपया केवल इसलिए है कि मूर्ति इसलिए बनी कि उसने अच्छी बातें सुनी है, परंतु सुनी तो थी, इस कान से सुनी और दूसरी से निकाल दी, इसलिए इस मूर्ति की कीमत कितनी है? ओनली 50 रुपए। उसने दूसरी मूर्ति को उठाया और दूसरी मूर्ति उठाने के बाद एक कान से धागा डाला और वो धागा मुख से निकला। कहां से निकला? मुख से, दूसरे कान से नहीं, कहां से निकला? मुख से। तो इसलिए उसकी मूर्ति की कीमत जो 500 रुपया हो गई। क्यों? कि उसने सुना भी है और औरों को सुना भी है। और तीसरी जो मूर्ति थी, मूर्ति तीनों एक जैसी थी, उसमें से उसने कान में से धागा डाला और वो धागा पूरा समा गया, कहीं से नहीं निकला, इसलिए उसकी कीमत कितनी हो गई? 5000। क्यों? कि उसने जो कुछ भी सुना था, ना उसे सुन के निकाला है ना सुन के सुनाया है, परंतु उसने पूरा अपने जीवन में उतारा है, धारण किया है, इसलिए उसकी मूर्ति की कीमत सबसे अधिक है। आप सभी को यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यहां तीन दिन में, दो दिन में जो आपने सुना है, उसको केवल सुन के आपको निकालना नहीं है, सुन को उसको सुनाना भी नहीं है, वर्णन भी नहीं, वर्णन तो करना है क्योंकि होता है ना, वर्णन करने के साथ साथ आपको अपने जीवन में समावेश करना है, उतारना है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप सभी अपने वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ हाँ, तो आप सभी बड़ी मूर्ति हैं, बड़ी वैल्यू हैं। तो अभी हमारी आदरणीय ज्योति बहन जी का सेशन है, वो आने वाली हैं, तो हम सभी उनके सेशन को सुनते हैं। ओम शांति।